اللہ کے خاص بندے۔
प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम अल्लाह के खास बंदे के कन्ने कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। आज भी हम हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जीवन के कुछ अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे।
मोहम्मद मेहंदी
और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का बाकी रहने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो शिक्षा केंद्र था जिसमें हज़ारों लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों का प्रशिक्षण करके इस्लाम की विशुद्ध शिक्षाओं को इस्लामी क्षेत्रों में विस्तृत किया। आपने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के पावन जीवन में आरंभ हुए सांस्कृतिक आंदोलन को परिपूर्णता के शिखर तक पहुंचाया। इस संबंध में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को जो सफलताएं प्राप्त हुई थीं, उन्होंने न केवल शिया विद्वानों, विचारकों और बुद्धिजीवियों के ध्यान को आकर्षित किया बल्कि सुन्नी विद्वानों के ध्यान को भी आकर्षित किया और उनकी सराहना करने पर बाध्य कर दिया। जिन सुन्नी विद्वानों ने हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की सराहना व प्रशंसा की है, उनमें से कुछ के नामों की चर्चा कर रही हैं।
मिस्र की राजधानी काहिरा में विदेशी भाषा विभाग के प्रोफेसर और अरबी भाषा के साहित्यकार डॉक्टर हामिद कहते हैं कि 20 वर्ष से अधिक समय से मैं धर्मशास्त्र और विभिन्न इस्लामी ज्ञानों के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहा हूं। इस अवधि में पैगंबर इस्लाम के पौत्र हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अधिक किसी हस्ती ने मेरे ध्यान को आकर्षित नहीं किया और मेरा विचार है कि वे इस्लामी ज्ञानों के सबसे बड़े विद्वान और विचारक हैं जिन्होंने शिया और सुन्नी समस्त विद्वानों के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट किया है।
सुन्नी मुसलमानों के मध्य प्रसिद्ध हदीस बयान करने वाले मालिक बिन अनस कहते हैं, मैंने उपासना और ज्ञान के दृष्टि से जाफर बिन मोहम्मद सादिक से बेहतर व योग्य किसी को नहीं देखा। हनफी संप्रदाय की बुनियाद रखने वाले सुन्नी मुसलमानों के प्रसिद्ध विद्वान अबू हनीफा नोमान बिन साबित हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं, मैंने जाफर बिन मोहम्मद से अधिक धर्मशास्त्री किसी को नहीं देखा। अब्बासी खलीफा मंसूर के कहने पर एक दिन मैंने धर्मशास्त्र के कठिन से कठिन 40 प्रश्नों को तैयार किया ताकि खलीफा और दूसरे विद्वानों की उपस्थिति में उन्हें पेश करूं। मैंने इन प्रश्नों व समस्याओं को पेश किया और हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उनका उत्तर इस प्रकार दिया कि सब ने स्वीकार किया कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई इस्लामिक ज्ञानों का विद्वान व ज्ञाता नहीं है।
ध्यान योग्य बिंदु यह है कि अधिकांश अत्याचारी शासक लेशमात्र भी ज्ञान में रुचि नहीं रखते थे। अगर कभी उनके दरबार में विद्वान और विचारक दिखाई पड़े हैं तो उनका प्रयोग वे हथकंडे के रूप में करके स्वयं को ज्ञान व प्रेमी दर्शाना चाहते थे या वे विद्वानों के शैक्षिक स्थान पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते थे। अब्बासी खलीफा मंसूर ने इस लक्ष्य के अंतर्गत अबू हनीफा से कहा था कि वह धर्मशास्त्र के 40 कठिन प्रश्नों को तैयार करे और सबकी मौजूदगी में उन्हें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा जाए। वह यह सोच रहा था कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो सबके सामने उनके ज्ञान का बोलबाला कम हो जाएगा, परंतु उसकी शैतानी चालों के विपरीत हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इन प्रश्नों का ऐसा जवाब किया कि सब हतप्रत रह गए और सब ने इमाम की प्रशंसा की। पवित्र कुरान के अनुसार सत्य के विरोधी उसे पराजित करने के लिए चाले चलते हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ईश्वर बेहतरीन युक्ति करने वाला है।
قاموس العلام نام کی ایک کتاب ہے جسے خیر الدین نے لکھا ہے۔ وہ اس کتاب میں حضرت امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے سمے میں گیان اور صدگڑوں میں سرو شریشٹھ تھے اور ابو حنیفہ گیان کے ان کی سبھا میں حاضر ہوتے تھے اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے ودت و نہت گیانوں سے لابھ اٹھایا ہے۔ امام صادق علیہ السلام راسانی کے وگیان سہت دوسرے سمست گیانوں میں دکش تھے۔ جن لوگوں نے امام صادق علیہ السلام کے گیان سے لابھ اٹھایا ہے ان میں سے ایک रासायनिक विज्ञान के जनक जाबिर बिन हय्यान थे।
हजरत इमाम सादिक अली सलाम ज्ञान में अनुदारिणी होने के अलावा उपासना, तकवा अर्थात ईश्वरी भय और साधारण जीवन व्यतीत करने में उनका कोई उदाहरण नहीं था। वह समस्त नैतिक सद्गुणों से सुसज्जित थे, इस प्रकार से कि उनमें सबसे प्रसिद्ध नैतिक गुण यह था कि उन्हें सादिक अर्थात सच बोलने वाला कहा जाता था। मिस्र के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर अहमद अमीन कहते हैं, इमाम सादिक अली सलाम शिया ही नहीं बल्कि विभिन्न कालों में भी सबसे बड़े धर्मशास्त्री थे।
दायरतुल मारिफ अल करनुल इशीन नामक इंसाइक्लोपीडिया के लेखक फरीद वजदी कहते हैं कि इमाम सादिक अली सलाम का जो शिक्षा केंद्र था, हजारों विद्वान और छात्र उसमें प्रतिदिन आते थे और हदीस अर्थात कथन, तफसीर अर्थात पवित्र कुरान की व्याख्या और दर्शन शास्त्र के प्यासे विद्वान इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ज्ञान की सभाओं में भाग लेते थे। अधिकांश अवसरों पर 2000 और कभी कभी 4000 प्रसिद्ध विद्वान उनकी ज्ञान की सभाओं में भाग लेते थे। हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की महान हस्ती इस प्रकार थी कि केवल शिया विद्वान ही नहीं बल्कि सुन्नी विद्वान, सूफी, अध्ययनकर्ता, धर्मशास्त्री, साहित्यकार, यहाँ तक कि ईश्वर और प्रलय के दिन का इनकार करने वाले भी आपके ज्ञान की सभाओं में भाग लेने के लिए आतुर रहते थे।
प्रिय श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का समापन हम दो अन्य हस्तियों के बयान से कर रहे हैं ताकि हजरत इमाम सादिक अलैहि सलाम के पावन जीवन से अधिक परिचित हो सकें और हम इस बात को जान सकें कि इमाम सादिक अलैहि सलाम ने कितनी मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहरें विश्ववासियों के लिए छोड़ी हैं। प्रसिद्ध मिस्री लेखक, शायर और साहित्यकार अब्दुल रहमान अशरकावी इमाम सादिक अलैहि सलाम के बारे में लिखते हैं, हजरत इमाम सादिक अलैहि सलाम के समय के लोग उनसे दोस्ती और प्रेम करने पर एकमत थे क्योंकि उनकी सोच बहुत ऊंची थी। वे खुला हुआ दिल, चेहरे पर मुस्कान, मृदुभाषी और भले कार्य अंजाम देने में सबसे आगे रहते थे। समस्त दबावों और सीमाओं के बावजूद लोगों को एक आशीर्वाद और अच्छी नसीहतों के साथ इस्लाम को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते थे।
इस्लामी जगत के एक विद्वान मोहम्मद बिन तलहा शाफी हैं। उन्होंने मतालिबुस्सुउल फी मनाकिब आले रसूल नाम की एक किताब लिखी है। वो इस किताब में हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में लिखते हैं। जाफर बिन मोहम्मद अहले बैत के महान विद्वान हैं। वो बहुत से ज्ञानों में दक्ष थे। वो बहुत उपासना करते थे और वो सदैव ईश्वर का गुणगान किया करते थे। कुरान की तिलावत बहुत अधिक करते थे और उसके अर्थों के बारे में बहुत अधिक चिंतन मनन करते थे। ईश्वरी किताब के समुद्र से वो अनमोल मोतियाँ निकालते थे। उसमें आश्चर्यचकित करने वाली बातों को वो स्पष्ट करते थे। अपने समय को विभिन्न उपासनाओं में बांट रखा था। उनका प्रकाशमयी व तेजस्वी चेहरा लोगों को परलोक की याद में डाल देता था। उनकी बातों को सुनकर लोग दुनिया और उससे संबंधित चीज़ों से विरक्त हो जाते थे। उनका अनुसरण स्वर्ग में जाने का कारण बनता। उनके तेजस्वी चेहरे से ये बात स्पष्ट थी कि वो पैगंबर इस्लाम के पौत्र हैं। उनकी विशेषताओं और सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती। उनके हवाले से बहुत अधिक रवायतें और हदीसें आई हैं और इस्लामी जगत के बहुत से विद्वानों ने उनके ज्ञान के सागर से अपनी प्यास बुझाई है।
श्रोताओं, ईश्वर की कृपा से हम हजरत इमाम सादिक अली सलाम के जीवन के शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाल सकें और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हजरत इमाम सादिक अली सलाम विस्तृत पैमाने पर धार्मिक गतिविधियों के साथ राजनीतिक मंच पर भी सक्रिय थे। हजरत इमाम सादिक अलैहि सलाम की शैली इस बात को स्पष्ट करने वाली है कि इस्लाम का मजबूत धर्मशास्त्र उस समय मानव समाज में प्रभावी भूमिका निभा सकता है जब समस्त क्षेत्रों में उसे व्यवहारिक बनाया जाए और वह हर समय की बुनियादी ज़रूरतों का जवाब दे सके। इस्लामी धर्मशास्त्र को चाहिए कि वह साम्राज्य के मुकाबले में डट जाए, उसकी वास्तविकता को स्पष्ट कर दे और इसके षड्यंत्रों को निष्क्रिय कर दे और जन आंदोलन का समर्थन करें।
ایران کی اسلامی ویوستھا کے سنستھاپک سورگی امام خمینی نے حضرت امام صادق علیہ السلام کے صداچرن کی گہرائیوں کو بہت اچھی طرح سمجھا تھا۔ وہ کہتے ہیں، اجتہاد میں سمے اور استھان کی پہچان دو مہتوپورن چیزیں ہیں۔ مجتہد ارتھات دھرم شاستری کو اپنے سمے کی سمسیاؤں کا گیان ہونا چاہیے۔ اسے اس بات کا بھی گیان ہونا چاہیے کہ وشو میں جو سنسکرتی پرچلت ہے اس کے سمبندھ میں کیا شیلی اپنائی جائے۔ اس کے اندر دوردرشتا ہونی چاہیے اور راجنیتک ایکتا مجتہد کی وشیشتا ہے۔ اس کے اندر اسلامی یہاں تک کہ غیر اسلامی سماج کے مارگ درشن کی بھی چھمتا ہونی چاہیے اور مجتہد میں نشٹھا اور ایشوری بھے کے علاوہ اچھے پربندھن ایوم یوکت کی یوگتا بھی ہونی چاہیے۔
اس بات میں کوئی سندے نہیں کہ جس طرح سے عباسی شاسک حضرت امام صادق علیہ السلام کے دھرم شاستر کے ویوہارک ہونے سے بھیبھیت ہیں، اسی طرح اس سمے کی ورچسوادی سرکاریں بھی اسلام کی وشدھ شکشاؤں ایوم دھرم شاستر کے پرچار پرسار و سنچالت ہونے سے بھیبھیت ہیں۔ ورچسوادی سرکاریں دھرم بھرشٹ وہابی جیسے سمپردایوں کا گٹھن کر کے اسلامی جگت میں پھوٹ ڈال کر پوتر قرآن کو جلا کر پیغمبر اسلام کی چھوی کو خراب دکھا کر نردتا کے ساتھ مسلمانوں کی ہتیا کر کے نیائے پریم اور شانتی کے ایشوری دھرم کی چھوی کو وشو میں خراب کر کے پیش کرنے کی چیشٹا میں ہے۔
شروتا کاریہ کے انت میں حضرت امام صادق علیہ السلام کے کچھ مولیوان اپدیشوں کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمارے دشمن تمہاری سنتان کے دلوں کو گمراہ کرنے والی شکشاؤں سے بھر دیں، ہماری شکشاؤں سے اپنی سنتان کو اوگت کراؤ۔ ہم ان لوگوں سے پریم کرتے ہیں جو سمجھدار، دھارمک بودھ رکھنے والے، سچے اور وفادار ہوں۔ ہمارے شیعہ صحیح راستے پر چلنے والے، ایشوری بھے رکھنے والے، اچھا کاریہ کرنے والے، ایمان والے اور سفلتا و موکش پراپت کرنے والے ہیں۔ سب سے اچھے میرے وہ بھائی ہیں جو ہماری کمیوں و دوشوں کو ہمیں اپہار سوروپ دیتے ہیں۔ منصور عباسی نے امام کو جو زہر دلوایا تھا اس کے کارن ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور ان کے جیون کے انتیم چھن تھے، تو امام نے اپنے پریجنوں کو ایکترت کیا اور فرمایا، ہماری شفاعت اس ویکتی تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے گا۔ پریہ شوتاو، آج کے کاریہ کا سمے یہیں پر سماپت ہوا۔ اگلے کاریہ تک کے لیے ہمیں انومتی دیں۔